हाँ, अल्पसंख्यक जातियों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि कोई समुदाय उर्दू भाषा अरबी लिपि के द्वारा ही पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पूरी सुविधा देनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 92। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया देहली जैसी संस्थान यदि उर्दू को अपनी शिक्षा का माध्यम रखना चाहें तो उनके काम में सहायता देनी चाहिए। उनकी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और साइंस की डिग्रियों को सरकारी नौकरियों के लिए भी अनिवार्य होने से दफ्तरी काम करने में उन्हें कोई अड़चन न होगी। भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात यहीं तक चल सकती है और यह पर्याप्त है। यदि उज़्बेक प्रजातंत्र में बसने वाले लोग अपनी भाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए वहाँ प्रबंध है। लेकिन यदि उज़्बेक भाषा न सीखने की किसी ताजिक ने कसम खा ली है तो सरकारी नौकरी पाने के लिए उज़्बेकिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान जाना पड़ेगा। साथियों, मुझे अफसोस है कि भाषा के सवाल पर विवेचन करते मैंने इतना समय आपका ले लिया, लेकिन आज वह भारी प्रश्न है, इसीलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। संक्षेप में कहने पर बहुत से भ्रम उत्पन्न हो सकते थे, इसीलिए विस्तार से कहना पड़ा। यह प्रश्न अभी हमें विचाराधीन रखना है। मैंने तो एक दृष्टि भर विचार करने के लिए आपके सामने रखा है। थोड़ा सा समय प्रगतिवाद के साहित्यिक स्वरूप पर विचार करने के लिए भी लेना चाहता हूँ। प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रूंधे रास्ते को खोलना, अपने पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। प्रगति जिसके रोम रोम में भींग गई, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई, वह स्वयं अपनी सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर कोई है तो यही कि लेखक और कलाकार की कृतियां प्रतिगामी शक्तियों की सहायक न बने, उनके शोषण और उत्पीड़न का हथियार न बने। प्रगतिवाद कला की अवहेलना नहीं कर सकता, वह तो कला और उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक रूढ़ियों को हटाकर सुविधा प्रदान करता है। वह रूढ़िवाद और कूप मंडूकता दोनों का विरोधी है। हमारे लिए देश और काल दोनों के प्रति विशाल दृष्टि रखना सबसे आवश्यक है। ध्यान रखना होगा कि हम वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, बाण, सरह, स्वयंभू, कबीर, विद्यापति, तुलसी, हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी हैं। योग्य संतान वह है जो पिता के वैभव को और अधिक बढ़ाता है। रविंद्र ने ऐसा करके हमारे सामने बड़ा उदाहरण रखा। पंत और निराला ने दिखलाया कि गंगा की छाड़न को फिर मुक्त प्रवाह में कैसे परिणीत किया जा सकता है। हमें अपने साहित्य को आधुनिक युग और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार समृद्ध बनाना है। उच्च कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध ही के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, साइंस संबंधी प्रचुर साहित्य का निर्माण करके आज साइंस का युग है। साइंस ही हमारे समाज के दैनिक और भौतिक तपों को मिटा सकता है। उसी के पास रत्नगर्भा वसुंधरा के उदार उदर में छिपी निधि को खोलने की कुंजी है। साइंस सिर्फ विशेषज्ञों तक ही सीमित रहने वाला ज्ञान नहीं, जिसे जनसाधारण तक जन भाषा में पहुंचाना है। हमें ऐसी सस्ती पुस्तक माला निकालनी चाहिए जिससे साइंस के भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी पुस्तकें जनता तक पहुंचाई जा सकें। इसी प्रकार विश्व साहित्य की अनमोल निधियों को भी अपनी भाषा में लाना चाहिए। तभी हम विश्व के कलाकारों में बैठकर अपने अश्वघोष और कालिदास का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथियों, अंत में लेखकों की आज की स्थिति पर दो शब्द कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। लेखक आज हमारे सबसे अधिक शोषित कर्म कर रहे हैं। उनके परिश्रम को कौड़ी के मोल खरीदा जा रहा है। उनका करतल भिक्षा तरुतल वास किसको नहीं विदित है। जीवन भर घुट घुट कर परिश्रम करना, बीमारी और बुढ़ापे में असहाय हो भूखे मरना, ये ही मानो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। इससे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, लेखकों का संगठन। मैं तो कहूँगा लेखकों को अपना सहयोगी प्रकाशन स्थापित करना चाहिए। उचित मजूरी और लेखन स्वातंत्र्य पाना तभी संभव है। अभी कानून भी लेखकों के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता, वस्तु तो वह हमारे हितों के लिए बनाया भी नहीं गया। अपने संगठित प्रयत्न से ही हम अपने अनुकूल कानून बनवा सकते हैं, जनता का युग आरंभ हो गया है। प्रगतिशील लेखक जन कल्याण के हामी हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है। आइए हम एकताबद्ध और संगठित हो राष्ट्र के नव निर्माण में दिल खोल कर लग जाएं।